मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 29 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए दाखिला लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं स्वाति, आप फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, पूजा शिव बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं, वसीम आलम अंसारी आपका गांव है डुमर डीहा जिला गिरिडीह झारखंड से हैं, दया शंकर राम आपका गांव है आस्ता जिला जशपुर छत्तीसगढ़ से हैं, अनिल कुमार यादव आप मालपुर उत्तर प्रदेश से हैं, राहुल सिंह आपका गांव है बमरौली जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, अमित कुमार वर्मा उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं और धीरेन्द्र कुमार चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हैं। तो स्वाति, पूजा, वसीम आलम, दया शंकर, अनिल, राहुल, अमित और धीरेन्द्र आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं थोड़े से एक अलग ही इशू पर बात करने जा रहा हूं और वह इशू है जिलों के विकास की आवश्यकता, यानी कि अब राज्यों को छोड़ करके हमें डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरे इस मुख्य विषय का जो आधार है वो इनफैक्ट कोई कल की न्यूज नहीं है, इसका आधार एक आर्टिकल है जिसकी चर्चा हम लोग आगे चलकर करेंगे। लेकिन आइए एक दो खबरें देख लेते हैं और सच यह है कि कल की न्यूज में मुझे कोई ऐसी खबर नहीं लगी जिसको आधार बनाकर हम चर्चा कर सकें। हाँ, जो बिखरी हुई खबरें होती हैं उनको मिलाकर कोई एक टॉपिक जरूर बनाया जा सकता है, तो इस तरह के टॉपिक पर समय समय में हम लोग बात करते रहेंगे। एक खबर आपने गगनयान को लेकर के सुनी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि भारत बहुत जल्दी अंतरिक्ष में अपने यात्री भेजने पर विचार कर रहा और भेजेगा ही, उसका नाम है गगनयान ये अभियान, और उसको लेकर के इसरो ने कुछ खुलासा भी किया है क्योंकि ये काम पिछले काफी समय से चल रहा है, ये अभियान चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है तो 3-4 साल में ही हम भेज देंगे, और स्वाभाविक है कि जब प्रधानमंत्री जी किसी की बात की घोषणा करते हैं और इतने बड़े अभियान की बात की घोषणा करते हैं तो ये कभी मत समझे कि उनके मन में ऐसे ही आया और उन्होंने घोषणा कर दी होगी, बकायदे इस पर विचार होता है क्योंकि प्रधानमंत्री की घोषणा का अर्थ है राष्ट्र से किया गया वायदा, चाहे वो किसी भी दल के क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। याद रखिए, आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के को तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सिटीजन ऑफ द कंट्री के रूप में भी, मतलब एक देश के नागरिक के रूप में भी, चाहे किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति हो, किसी भी धर्म जाति क्षेत्र का हो, लेकिन मूलतः वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री पद के जो दायित्व होते हैं, जो सम्मान होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना सम्मान उनके प्रति व्यक्त करना चाहिए और उनकी कही गई बातों को स्वीकार भी करना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी ने बकायदे उनसे बात की होगी और संभावनाएं जब बताई गई होंगी तभी उन्होंने इस बात की घोषणा की। तो ये जो गगनयान वाला जो टॉपिक है मित्रों, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये आपके साइंस का बन गया है और आप जानते हैं कि अब विज्ञान पर जो प्रश्न आने लगे हैं, अब वो सैद्धांतिक विज्ञान खत्म हो गया है जो आप एनसीईआरटी की किताबों में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी, जूलॉजी के तहत पढ़ते हैं, अब तो विज्ञान का संबंध बिल्कुल करंट से हो गया और मैं समझता हूं कि ये ज्यादा सही भी है। तो गगनयान आप टॉपिक को नोट कर लें मित्रों, और न्यूज में कोई खास बात नहीं थी। अब आज मैं मुख्य विषय पर सीधे आता हूं और जैसा कि मैंने कहा कि आज के मेरे मुख्य विषय का आधार एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल छपा है विवेक देव राय जी का। देखिए, ये बहुत मायने रखता है कि आर्टिकल किसका है। जो विवेक देव राय जी हैं, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर वो कोई बात लिख रहे हैं तो उसमें अपना उसमें तथ्य होंगे और उसका अपना महत्व होगा, उसका अपना वजन होगा। इस आर्टिकल का हालांकि शीर्षक है देखिए सरकारी गजेटियर, उन्होंने ये लिखा है कि जो सरकारी गजेटियर होते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो इतिहास के बहुत बड़े सोर्स का काम कर सकते हैं। अब यहां मैं थोड़ा सा रुककर आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा जो मुख्य विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। ध्यान यह कि अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर अपने उठाकर देखेंगे तो आपके जनरल स्टडीज के तहत, फर्स्ट पेपर में इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारा इतिहास लिखा जाता है, लिखा गया है, उनके लिए कहां कहां से रिसोर्सेज लाए गए हैं और उन रिसोर्सेज का क्या महत्व है। सिक्कों का अपना महत्व है, उस काल में जो ग्रंथ लिखे गए उनका अपना महत्व है, खुदाई से जो चीजें मिली उनका अपना महत्व है, जो शिलालेख हैं उनका अपना महत्व है। तो इन सब के अपने अपने महत्व हैं और इन पर प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, संभावना क्या बल्कि पूछे गए हैं। तो चूंकि ये विवेक देव राय जी का लिखा लेख है जिसमें वो गजेटियर के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि अगले साल के लिए या इस साल के लिए तो चलिए अब थोड़ी सी संभावना कम होती काफी कम हो गई है क्योंकि हम अगस्त के लास्ट में बिल्कुल एंटर कर गए हैं और सितंबर के लास्ट में एग्जामिनेशन होने हैं। तो आप मान के चलिए कि 2019 के मेंस के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, खासकर सरस्वती नदी को लेकर, कि किस तरीके से 1883-84 का जो रोहतक का गजेटियर है उसमें बकायदे सरस्वती नदी का उल्लेख है और बताया गया है कि कैसे ये पहले यमुना से पहले पुरानी सरस्वती नदी थी और कैसे उसका मार्ग था और कैसे फिर क्या भौतिक परिवर्तन हुए, प्राकृतिक परिवर्तन हुए और फिर सरस्वती नदी लुप्त हो गई और कैसे आपके घग्घर और ये जो यमुना नदी है उनके प्रवाह की दिशा में परिवर्तन हुआ। अब आप देखिए कि ये जो हिस्सा है बिल्कुल इस आर्टिकल के लास्ट में, ये आपको भूगोल की भी तैयारी करा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि इस पर आधारित कोई प्रश्न प्री में या मेंस में पूछ लिया जाता है तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट बिल्कुल चकमक आ जाएगा कि अरे यार ये किताब में तो है नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं है, दूसरी किताबों में भी नहीं है, और सच है कि ये नहीं है। लेकिन यदि आप सतर्क हैं तो फिर आपको पता लगेगा कि नहीं नहीं, विवेक देव राय जी ने इधर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। तो मित्रों ये एक टॉपिक है जो आपको तैयार करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और कुछ पॉइंट्स बस आप इस आर्टिकल से नोट कर लें। दूसरी बात, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं मित्रों, कि जिलों के विकास की क्यों जरूरत है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, शुरुआत गजेटियर से ही कही है कि जो नए जिले बनाए जाते हैं वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, संसद उसमें कुछ नहीं कर सकती है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2001 की जनगणना में हमारे केवल 593 जिले थे, 593 थे, जो अब लगभग 700 के करीब हो गए हैं। इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा विचार दिया है और वो ये दिया है कि अब देखा यह जा रहा है कि एक राज्य है, ठीक है, आप उस राज्य को कह सकते हैं कि विकसित राज्य है, मतलब अच्छा डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन उसी राज्य में कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें हम एक तरह से पिछड़ा राज्य कहते हैं, लेकिन उसी के कुछ जिले ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं। जब आप पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, मैं आपको केवल एक आउटलाइन बता रहा हूं कि किस एंगल से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है। और एक बात उन्होंने फिर दूसरी भी कही कि ये देखा गया है कि जिन राज्यों के जिले छोटे छोटे हैं वो राज्य आगे बढ़ गए हैं, उनके जिले भी आगे बढ़ गए हैं क्योंकि छोटे जिले हैं। राज्य छोटा है या बड़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके जिले छोटे हैं। अब आप देखिए कि दो चीजें इससे स्थापित होती हैं, पहली बात कि जो छोटे राज्य हैं वो तेजी के साथ विकास कर रहे हैं, और देखिए इसके बारे में बिल्कुल बकायदे हमारे सामने प्रमाण है कि सन 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बना उसी समय आप देख रहे हैं कि दूसरे राज्य आपके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, ये सब राज्य बने। तो अगर आप 2000 से पहले के उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को देखें और अभी की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को देखें तो उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। छत्तीसगढ़ बहुत डेवलप कर गया, झारखंड और आपके उत्तराखंड की भी स्थिति लगभग उसी तरह से है, और अभी हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट अलग हुआ है। तो ये देखा गया है कि छोटे छोटे राज्य बहुत जल्दी तेजी के साथ विकसित करते हैं क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं प्रदान करते हैं। कलेक्टर के पास जो एक जिला है उसका एरिया छोटा है, जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास छोटा राज्य है, वो उनके दौरे कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सकते हैं और वहां डेमोक्रेसी भी ज्यादा सही तरीके से काम करती है क्योंकि वहां के नागरिक बहुत आसानी के साथ, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो राजनीतिक प्रशासन हो, उनके साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो छोटे राज्य डेवलप कर रहे हैं, केरल, पंजाब, हरियाणा इससे पहले हमारे सामने इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं। तो अब वो बात जिलों पर आ गई है और आपको ध्यान होगा कि सरकार इस बात पर ध्यान भी दे रही है और मार्च 2018 में बकायदे जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको याद होगा हम लोगों ने इस पर बात भी की थी और ये कार्यक्रम 115 पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा है जिनका विकास किया जाना है, 115 जिले। इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि जो जिले के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो तथ्य तैयार किए गए हैं, उन पर आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए इस टॉपिक के बारे में इससे पहले हम लोगों ने बातें नहीं की थी। जब इसकी घोषणा हुई थी मुझे अच्छे से याद है, तब हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी और इसके बाद यह टॉपिक छूट सा गया था क्योंकि इसकी चर्चा भी नहीं हो रही थी। और सीधी सी बात है, देखिए मार्च में यह घोषणा हुई, हम अगस्त लास्ट में इसकी बात कर रहे हैं, अब इसकी चर्चा होगी आप देखेंगे, चूंकि इस आर्टिकल से उसकी शुरुआत हो गई है। अब जहां इस कार्यक्रम को की शुरुआत की गई है वहां से अब न्यूज आने शुरू होंगे, वहां थोड़ी सी स्टडीज होंगी, क्या हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या उपलब्धियां हो रही हैं, तो बट नेचुरल है कि फिर लिखने वालों को, अखबार को भी, जर्नलिस्ट को भी चीज बातें मिलेंगी बताने के लिए। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक मित्रों हो गया है, आपको इस पर ध्यान देना है और मैं आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें दो टॉपिक आपको मिलेंगे, एक तो जिले का विकास और दूसरा गजेटियर, प्लीज आप उन पर पॉइंट्स नोट कर लें। मुख्य विषय के बारे में दोस्तों इतना ही, आज मैं आपको काफी प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें दो तीन प्रेस क्लिपिंग्स हैं जो जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से कि प्लीज आप इन्हें पढ़ें। एक तो भरत झुनझुनवाला जी का ही है जो खासकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर के उन्होंने लिखा है, इस पर हम लोग काफी बात भी कर चुके हैं, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद एक आर्टिकल है मित्रों, रीराइटिंग हिस्ट्री को फिर से लिखने की जो कोशिश चल रही है या जो बात की जाती है हिस्ट्री के ऊपर, चूंकि हिस्ट्री आपके सिलेबस में है और अगर आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है तब तो इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रीराइटिंग हिस्ट्री है, ये जरूरी इंग्लिश में है, हिंदू पेपर में छपा है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आप लोग पढ़ेंगे, मेरी कोशिश होगी कि इसका हिंदी वर्जन मैं आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। और इसके बाद एक आर्टिकल है डैम के ऊपर, बांध के ऊपर, ये भी हिंदू का आर्टिकल है, मेरी कोशिश होगी कि इसका भी मैं आपको हिंदी उपलब्ध करा सकूं। इन्होंने दिया है कि किस तरीके से हमें अपने बांधों को मैनेज करना चाहिए ताकि जो बाढ़ आती है वो उसको नियंत्रित किया जा सके और खासकर जो केरल में बाढ़ आई है उसके लिए बांधों को काफी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, वो आप लोग अपने ढंग से देख लीजिएगा, केरल के में जो बाढ़ आई थी तो किस तरीके से प्रशासन ने उसे मैनेज किया है और उसका क्या मॉडल है, वो भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, वह भी हिंदू का ही आर्टिकल है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों न्यूज क्लिपिंग्स के बारे में बस इतना ही, ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं, दानिश अंसारी जबलपुर मध्य प्रदेश से, लक्ष्मण राम अगोलताई राजस्थान से और देवेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।